एक ओंकार सत गुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दशहरा हौ नाम हर का सदा जाच देहु प्रभ तरणे तरा संसार रोगे नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच न लागे मैल क्या मल तोइया गुण है हार परोए किस कारोइया विचार मारे तरे तारे उल्ट जून न आवा आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावा आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामण गावा गावन हार शब्द सुहावण सालाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावै सहज नावै देणी त संगम सत सते आराधे ओंकार साचा नित दे चढ़े समाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय के वडे अखिया हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी हित मन मान्या मेरा पूछ करे आव है बिखला दे शब्द सचा गुर मेरा आखन टूट न भगत भंडारी पर पुर रहा सोई नानक साच कह बेनते मन मांजै सच सोई आखन टूट न भगत भंडारी पर पुर रहा सोई नानक साच कह बेनती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जा तीर्थ नाम है
वाहे ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद कहां तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके मेहमा जो तिहारी हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी सुनो तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे केहु कीट बखाने, मेहमान तो तुही प्रभु जाने। पिता जन्म जो पुत ना पावे, कहाँ तवन का भेद बतावे। सम्मान योग गुरु रूप सात सुंदर जियो पते कबूल करने वाहे पिता नानक साच कहे बेनंती, मन मांजे सच सोई। इस शब्द विच बुनियादी गल सतगुर ने अखीर विच कह दिती है, मोर ला दिती है। महाराज जी कहिंदे ने एक गल मैं सच कह रहा है, पहले पातशाह जी की रचना धन गुरु नानक देव जी की, इनू सच करके जाणो। ये सच भी मैं हुक्म दे रूप विच नहीं कह रहा, बेनती दे रूप विच। नानक साच कहे बेनंती, ये सच मैं बेनती दे रूप विच कह रहा कि मन नू मांझ लईए, बस यही सच है। मैं सच कह रहा बेनती दे रूप विच, मन नूं मांझ लईए, यही सच है। मन ही सच हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। उस दिन मैं अर्ज कीती सी, शरीर शुद्धि, वाक शुद्धि, विचार शुद्धि ते भाव शुद्धि। मूल रूप दे चाहे विचार शुद्धि ते भाव शुद्धि। अपने विचारां नूं किस तरह शुद्ध करांगे? विचारां दा शुद्ध होना ही मन दा मांझे जाना है, मन दा पावन होना है, मन दा पवित्र होना है। सोचनी पवित्र, लेकिन सिर्फ सोचनी पवित्र मनुख शरीर नूं जद व्यवहार विच लैंदा है तो 80% जज्बियां दे तहत, भावनावां दे तहत। कोई कोई मनुख विचारशील, तर्कशील, विचार दे अधीन काम करदा है। बड़े बड़े विचारक भी देखिया गया, वह भी जज्बों के अधीन काम करते हैं, भावनावां के अधीन करते हैं। जद घृणा के चौवन, जद क्रोध के चौवन, जद वाशना के चौवन, जद प्रेम के चौवन, ये सब जज्बे ही ने। विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। अगर विचार शुद्ध ने और ये विचार इतने प्रबल शुद्ध ने कि मनुख अपने भावनावां विच भी शुद्धि ले आया है, प्रेम है, घृणा नहीं, क्योंकि जिस नाल प्रेम है उसते क्रोध करना बड़ा औखा है, जिस नाल प्रेम है उस नाल घृणा करनी बड़ी औखी है, जिस नाल प्रेम है उस नाल छल ते कपट करना बड़ा औखा है, जिस नाल प्रेम है उसनू मारना बड़ा औखा है। जज्बियां दी शुद्धि, भावनावां दी शुद्धि प्रेम नाल है। जैसे जैसे मनुख दा प्रेम फैलदा है ते प्रेम असीम हो जांदा है, बस उसे वक्त ही मनुख परमात्मा दा रूप हो जांदा है। इसे नूं साहिब कहिंदे ने मन दा मांझणा ही परमात्मा दा रूप होना है, सच दा रूप होना है। नानक साच कहे बेनंती, सच कह रहे हैं पर बेनती दे रूप विच कह रहे हैं, हुक्म दे रूप विच नहीं। हुक्म दे रूप विच जो कहंदे ने उहनां नूं कहंदे ने हुक्मरान, बेनती दे रूप विच जो कहंदे ने उहनां नूं कहंदे ने संत। बदकिस्मती है कई दफा संत भी हुक्म दे रूप विच कहण लग पैंदे ने, तो फिर वह हुक्मरान हो जाते ने, संत नहीं। दरअसल संत ते पंथ अलग नहीं सन, कतई नहीं सन। गुरबाणी संत बनाती है, पर सहजे सहजे ऐसा मौका आया, पंथ का मार्ग संत का मार्ग है, संत शिखर है, पंथ मार्ग है, रस्ता है। तो जिस रस्ते तो लंघ के मनुख मंजिले मकसूद ते पहुंचे है, आखिर उस रस्ते की निंदा तो नहीं करता। जिस पौड़ी ते चढ़ के मनुख ने कोठे ते जाना है, अगर उस पौड़ी नू तोड़े तो ये अकिरत घनता ही है, ये तो अकिरत घना है। इस पौड़ी ने तेनों कोठे ते चाड़िया, हुण तू पौड़ी तोड़दा है। इस रस्ते ने तेनों मंजिले मकसूद ते पहुंचाया, हुण तू रस्ते का विरोधी। पंथ का मतलब की है? रस्ता। गुरु पंथ, गुरु का बनाया होया रस्ता। ते गुरु का रस्ता कित्थे खत्म होंदा है? परमात्मा ते खत्म होंदा है, ईश्वर ते खत्म होंदा है। संसार तो शुरू होंदा है, निरंकार ते समाप्त होंदा है गुरु पंथ। और जो परमात्मा तक पहुंच गया संत, लंघिया कित्थों? गुरु पंथ तो। पंथ रस्ता, पंथी जो रस्ते ते चलदा है। इतिहास विच एक दफा 50-60 साल पहले घटना घटी ननकाणा साहब दे, संत ते पंथ अडरे हो गए। बड़ी दुखद घटना घटी, क्योंकि संत बेनती नहीं करता सी, हुक्म करन लग पिया हुक्मरान। तो फिर ननकाणे साहब दे हुक्मरान जो कुछ कर सकता है, सिंघां नूं बन बन के जंडा नाल साड़िया, कतल कीता, जिंदा जलाया, मारिया, कुटिया, बड़ा भारी खून खराबा, ये संत नहीं कर सकता, हुक्मरान कर सकता। संत ते पंथ दा टकराव हो गया। बदकिस्मती है टकराव नहीं चाहिदा सी, हो गया। सारे अस्थान इतिहासक खास करके पंथ हितेशियां दे हाथ दे चा गए। पंथ हितेशी सन, पंथ नाल प्रेम करन वाले सन, पंथ तो कुर्बान होने वाले सन, पर गुरबाणी जिस टिकाने पे पुचांदी उसकी सूझ समझ नहीं सी। लेकिन पंथ प्रेमी जरूर सन, पंथ हितेशी जरूर सन। सियाने मनुखा ने उदों भी चाया सी कि सन बचे रहन, कम से कम ओ जो पंथ हितेशी ने। और सिंघा ने सन्मान भी किया, खास करके संत बाबा अतर सिंह का, तो पंथ हितेशी सन। अपनी जबान नाल पंथ दी कदी निंदा नहीं की थी, पंथ दी उपमा, पंथ ते चलाण दी कोशिश। संत जान के पूजे गए, और जद भी उन्होंने कुछ किया बेनती दे रूप विच, मैं फिर अर्ज करा हुक्म दे रूप विच कहिंदा है हुक्मरान, बेनती दे रूप विच कहिंदे ने संत। दूर क्यों जाओ? बाबे दी पंक्ति, नानक साच कहे बेनंती। मैं सच कह रहा पर बेनती दे रूप विच, हुक्म दे रूप विच नहीं। तुहाडी मर्जी है, मनो चाहे ना मनो। हुक्म विच ए गल नहीं आउंदी मनना है कि नहीं मनना, मनना ही पैना है। नहीं मनोगे तो गर्दन कट देंगे, नहीं मनोगे तो बंद कर देंगे कोठड़ी। हुक्म तो मनना ही पैना है। हुक्मरान दे हुक्म दी अदूली नहीं हो सकती। जब कोई कहे ये तो गल मननी पैनी है हुक्म, तो फिर वो संत नहीं है, हुक्मरान है। और किसी ने हुक्म वापस किया तो फिर उसकी खैर भी कोई नहीं, हुक्मरान। संत सच कह रहे हैं बेनती दे रूप विच, मर्जी है थोड़ी मनो चाहे ना मनो, जबर नहीं है। जब कभी धर्म की दुनिया विच भी जबर आ जाता है तो धर्म भी राजनीति बन जाता है, धर्म धर्म नहीं रहता। ये भी मैं अर्ज करते हैं, राजनीति या राजनैतिक हुक्म करता है, बेनती नहीं करता। हुक्म मनना ही पैना है। नहीं मनिया तो खैर कोई नहीं, फिर नहीं मनिया तो फिर जेल दी तंग तारीख कोठड़ी है, नहीं मनोगे तो हथकड़ी है, नहीं मनोगे तो जितना जालम हुक्मरान होवेगा उतना उसते जुल्म कीता जाएगा जो नहीं मनता। और ऐसा हो रहा है सारी दुनिया च और हो रहा है। जो बेनती दे रूप च सच नू बयान करे संत, दो शब्द होर कवा, हुक्म दे रूप दे ते झूठ ही किया जा सकता, सच नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच नाल हुक्म चलदा ही नहीं। नानक हुक्म ना चले नाल कसम चले अरदास, उते ते हुक्म चलदा ही नहीं, की हुक्म करेगा तू। ना परमात्मा ते हुक्म चलदा, ना परमात्मा दी गल हुक्मन आखी जा सकती है। नानक हुक्म ना चले, पर बदकिस्मती है दुनिया को इतनी सियाणी नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, बचन हुक्म दे रूप च कहना है, तो हुक्म रूप कहना ही गल स्पष्ट हो जाती है, बचन सच नहीं है, सत्य नहीं है। सच ते बेनती दे रूप च आख्या जा सकता है, सच ते अरदास दे रूप च आख्या जा सकता है, सच ते प्रार्थना दे रूप च आख्या जा सकता है, सच हुक्म दे रूप च नहीं आख्या जा सकता। जद कदी कोई अपने बचना नाल हुक्म जोड़ लेंदा है ते नाले बचन ते मोर ला देंदा है सच दी, मैं सच कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, तो फिर हुक्मरान दी तरह क्यों कहना है, संत दी तरह कह रहे। सच हुक्मरान दी तरह नहीं आख्या जा सकता, सच बेनती दी तरह, प्रार्थना दी तरह, अरदास दी तरह। नानक हुक्म ना चल रही, इतने नानक साच कहे बेनती, सच कह रहे हैं पर बेनती दे रूप च, मर्जी है मनो मर्जी है ना मनो, मन लोगे आनंद प्राप्त करोगे, नहीं मनोगे ठोकरां खाओगे, पर बेनती है हुक्म नहीं। और ऐसा सिलसिला फिर दौर चलिया बिल्कुल खुलम खुला, पंथ अलग हो गया, संत समाज अलग हो गया, हैरानगी। पंथ संत है, संत पंथ है, एक है। और मैं समझदा ऐसी हुण कोशिश होनी चाहिए है, पंथ ही संत है, संत ही पंथ। और संत दी पहचान जो कुछ कहेगा बेनती दे रूप, बेनती हाथ जोड़, हुक्म नहीं। हुक्म हुक्मरान, हुक्म राजनैतिक, हुक्म मनना ही पाएगा, नहीं मनिया तो खैर नहीं। ये बोल राजनैतिक दे हो सकते ने, हुक्मरान दे हो सकते ने, संत दे नहीं। पता नहीं इस पंक्ति ने मैनु इस तरह क्यों मजबूर कर देता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह पंक्ति, नानक साच कहे बेनती, सच कह रहे हैं पर बेनती दे रूप च, हुक्म दे रूप च नहीं। जब भी कभी सच नू हुक्म दे रूप च बयान किया जाए तो हुक्म करने वाला ही राजनैतिक हो जाता है, हुक्मरान हो जाता है, और फिर वह सच भी झूठ होता है। सच दे जबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सूरज है, मनुख इनकार कर सकता है, मैनु ये तेरी रोशनी नहीं चाहिए, मैं अखां बंद करदा। खुल है मनुख नो, मनुख कह सकता है परमात्मा तेरी बख्शिश नहीं चाहिए मैनु, मैं नहीं याद करदा तेनु, ठीक है ना कर। कोई जबर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, मैं नहीं नितनेम करदा, मैं नहीं अमृत वेले उठता। तू जितने अवतारां दे राही संदेश भेजे है मैं नहीं मनदा, ना मन, कोई जबर नहीं, हुक्म नहीं है। पर जे हुण अखां बंद करके चलेगा सूरज दी रोशनी दे के ठोकरां खाएगा, किधरे खड्डे च गिरेगा, चोटां लगनगियां। सूरज नूं दोषी ना ठहराई कि इन्हें रोशनी नहीं दित्ती, नहीं मननी गल तो विकारां विच फसेगा, विकारां विच फसेगा, दुबदा विच फसेगा, दुखी होवेगा। ईश्वर नूं दोषी ना ठहराई, परमात्मा नूं दोषी ना ठहराई। परमात्मा रोशनी है और सारियां लई रोशनी है, परमात्मा दयालु है और सारियां लई दयालु है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, जत्र तत्र दिशा विशा होए फैले हो अनुराग, अनुराग प्यार, और उदा प्यार सारे लिए है। दुनिया विच बाकी ते असी कुछ सांझा नहीं कह सकते, परमात्मा ही सांझा, बाकी कुछ सांझा नहीं, कोई मुल्क सांझा नहीं। मैं नहीं कह सकता ईरान भी मेरा है, ईरानियां ने वड़न भी नहीं देना बिना वीजे तो। अफगानिस्तान मेरा है, मैं नहीं कह सकता, कोई सारे मुल्क सांझे नहीं है। और बदकिस्मती है, मनुख भी सांझे नहीं, जात अलग, पात अलग, मजहब अलग, वर्ण अलग, पता नहीं कितनी वंड है। जैनी बोधी नहीं है, बोधी हिंदू नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, इंज वंड है। तो एक मुसलमान दा मुसलमान दे प्रति जो रवैया होगा, जरूरी नहीं कि वही रवैया हिंदू दे प्रति होवे। मुसलमान जरा नेड़े है, ये दूर है। एक ईरानी दा ईरानी दे प्रति जो रवैया होवेगा, हो सकता है अफगानी दे प्रति ना होवे, जरा दूर है। तो दूरियां बड़िया ने, सांझा कुछ भी नहीं है जगत देच। हां एक परमात्मा ही है जो सांझा है, बाकी तो कुछ भी सांझा नहीं रहा। ये भी मैं अर्ज करा, ना जमीन सांझी है, ना मुल्क सांझे हैं, ते ना मनुखां दी कोई आपस दे सांझी वालता है। मजहब ने विचकार दीवारां ने, जात पात दियां ने, वर्ण दियां ने, भाषा दियां ने, पता नहीं कितनियां दीवारां ने। इक्को ही सांझा है परमात्मा, और इक्को ही ओ है जिन्हों वंडिया भी नहीं जा सकता। अक्सर मैं अर्ज करना, जो सच है केवल मेरा नहीं, और जो केवल मेरा है वो सच भी नहीं है। जो परमात्मा है वो सिर्फ मेरा नहीं, और जो सिर्फ मेरा है वो परमात्मा भी नहीं, वो तो सांझा है। तो जब सांझा है तो उस सांझे की गल तू सांझी ही कर सकदा, और बेनती दे रूप च कर सकदा, हुक्म दे रूप च नहीं। नानक हुक्म ना चल रही। मैं फिर अर्ज करा, जब भी कोई धार्मिक मनुख हुक्म दे रूप च गल करे तो एक गल स्पष्ट हो गई, हुक्मराम। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अकाल उस्तर दे जब बचन पढ़े ने तो उपर लेख मिलता है, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, मैं कीट दे प्रति अकाल पुरख दे बचन। तो मैं बेनती दे रूप च कह रहा, बेनती चौपाई बेनती। मैं फिर अर्ज करा, सच नु हुक्म दे रूप विच नहीं किया जा सकता। और एक दफा फिर दोहरा दें, बार बार मैं इस तरह पढ़ा, समा भी ना जाया करा, जो हुक्म दे रूप विच कहे संत नहीं हुक्मरान। बचन मनोगे तो ठीक, नहीं मनोगे तो गर्दन उड़ा देंगे। बचन मनोगे तो ठीक, नहीं तो जल्दी जेल दी तंग तारी कोठड़ी च पा देंगे। हुक्म मनोगे तो ठीक, नहीं मनोगे तो सारी सहूलतों तो वांझे रह जाओगे। ये हुक्मरान कह सकता है, ये संत नहीं कह सकता। किसी भी अवतार ने इस तरह के हुक्म के रूप में गल नहीं की थी। यही कारण है कि मनुख नहीं कह सकता मैं कानून नू मन्ना ना मन्ना मेरी मर्जी। मनुख ऐसा नहीं कह सकता, पर मनुख ऐसा कह सकता मेरी मर्जी है, मैं धर्म नू मन्ना ना मन्ना, मेरी मर्जी है मैं गीता नू मन्ना के नहीं मन्ना, मेरी मर्जी है मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नू मन्ना है के नहीं मन्ना, मेरी मर्जी है मैं कुरान शरीफ नू मन्ना के नहीं मन्ना। मुसलमान की कोई जबर नहीं है, मेरी मर्जी है मैं बाइबल नू मन्ना है के नहीं मन्ना। आखिर सतपुरुषों के बचन परमात्मा के बचन ने आए ने, तो सब बेनती दे रूप च ने, सब प्रार्थना दे रूप च ने, इनकार कर सकते हो। श्री राम ने मनुख सुखी रह सकन मर्यादा बनाई, पर मेरी मर्जी है मैं मर्यादा मननी है कि नहीं मननी, जबर नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। कृष्ण दे बोल ने भागवत गीता जो जिंदगी दे रब्बी गीत पैदा करन दे बड़ी सहायक है। मेरी मर्जी है मैं मन्ना मैं ना मन्ना, सतगुरु की यह अगमी बाणी जो अगमता तक लह जाती है, मेरी मर्जी मैं मनना मैं ना मना, सब बेनती के रूप में है, हुक्म नहीं है, किधरे भी हुक्म नहीं है, मर्जी है मेरी। नानक साच कहे बेनंती, सच कह रहा बेनती के रूप में कह रहा, मन नू मांझ लईए ते मन ही परमात्मा का रूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, किवें मांझिए इस मन नू, किवें साफ करिए, किवें धोईए। तो साडे देश ने बहुत पहले एक कोशिश की थी और सारी दुनिया ने किसी ना किसी रूप में तीर्थ बने बई इत्थे इशनान करो मन मांझिया जाएगा, पाप धुल जाणगे। पाप का धुलना की है, मन मांझिया गया, पाप ते मन दे चौंदा है, अपराध तन दे तल ते प्रगट होंदा है, पाप मन दे चौंदा है। पाप की है बुरा सोचना, ते बुरा सोचना की है तीन तरीके ते नाल ही बुरा मनुख सोच सकता है। मन दे तीन दोख हो सकते ने, किसे दा कतल करन दा सोचना, किसे दी जान खोण दी सोचना, किसे दा माल असबाब खोण दी सोचना, या किसी की इज्जत असमत लुटन की सोचना, सिर्फ सोचना, करना नहीं सिर्फ सोचना, यह पाप है। करना तो अपराध है ना, सोचना पाप है। यह पाप धुल जाएंगे, ये सोचने मिट जाएंगे, मनुख चंगा सोचेगा। सरबत का भला मंगण वाला भी जबान नाल अंदरों तो बुरा मंग ही रहा है, गुस्ताखी माफ कोई विरला ही है जड़ा अंदरों भला मंगे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा गला। ए इतनी वड्डी प्रार्थना है, ए इतनी वड्डी अरदास है, सरबत दा भला जिसने दिल दी गहराई चो मंग लिया, इहदे नाल भी हिरदे दी शुद्धि हो जाती है। बड़ी गल है ते बड़ी घटना है, किधरे इंज रसम ना समझ लेना। दिल दी गहराई चो जो सारी मखलूक दा भला मंग रहा है, हो नहीं सकता कि प्रकृति दे तलते उसका बुरा होवे, होवेगा ही नहीं। और जिहड़ा हर वक्त मखलूक दा बुराई मंग रहा है, उम्मीद नहीं इसका भला हो सके। जिस दे अंदर तात पराई होवे, इसका कदे ना होवे भला, होंदा ही नहीं। हर वक्त जो बुरा मंग रहा है दूसरे का, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई नीत। किस तरह मन मांझिए, तो सारी दुनिया दे तीर्थ ने और बहुत सारे ने, भगत नामदेव जी महाराज ते कबीर जी कह रहे ने, नामन को तीर्थ घने, कोई एक है तीर्थ, 68 तीर्थ ते इतिहासक ने, प्रमाणिक ने, इस तो अलावा बहुत सारे ने। नामन को तीर्थ घने, मन बौरारे पूजन को, ए पगले मन नामन वास्ते कोई एक तीर्थ है, पता नहीं कितने ने, पूजन ले कोई एक देवता है, 33 करोड़ ते ए ने, नवे भी लोगों ने बनाए हुए ने बथेरे, 33 करोड़ तो इलावा भी कई बहुत सारे देवते बने ने। नामन को तीर्थ गने, मन बौर रे पूजन को बौ दे, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौर रे, छूटन हर की से, ए पगले मन नाले 68 तीर्थां दे की होना है, कुछ भी नहीं। काम क्रोध पंचां के वसरे, तीर्थ नाए कहें सब उतरे, अंदर वासना है, अंदर क्रोध है, अंदर लोभ है, जिन्ने कर्म करदा है लोभ वस होके करदा है, वासना वस होके करदा है, अहंकार वस होके करदा है, कहिंदा डुबकी ला ये सब लै गए, ये किस तरह हो सकता है, बड़ा सौखा काम है, एक डुबकी ला हो गई गल। बड़ी पवित्र नगरी बनाई शिव जी ने बनारस, कूफा एक नगरी है, सूफिया ने भी बनाई अरब देशों च, सऊदी अरब देश, और बनान दे पिछे पिछोकड़ ए सी कि इत्थर इत्थे सिर्फ अभ्यासी रहन, दूजा नहीं, जो नाम जपदा ओ ही। चंगी सोचनी सी, 10-20 बंदे या 30-40 बंदे सिर्फ नाम अभ्यासी जिस जगह रहनगे, जगह चार्ज हो जाएगी, जगत शक्ति आ जाएगी, उत्थे चोर भी बैठेगा ते उदे मुंहों परमात्मा का नाम निकल जाएगा, मजबूरन जगह दी तासीर करके। इनू कहिंदे ना अस्थान भेद, कबीर धरती साध की जिथे साधु बैठे वन, तस्कर बैसे गाए ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਤਸਕਰ ਵੈਸੇ ਗਾਏ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਬਿਆ ਪਈ, ਉਸ ਚੋਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧੁੱਲ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਿਆ ਪਈ ਉਹਨਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਸ ਸਭ ਨਾਮ ਰਸਕ ਹੋਵਣ, ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਬਣਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਭਿਆਸੀ ਆਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੀਰਥ ਤੱਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਕੋਈ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਂਧੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅਸਥਾਨ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਪ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰੌਣਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਲਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਪੜੋਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਢੂੰਡਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ। ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਉਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, मजालेस नूं अपना आपा मिलिया होवे। जद भी अंदर झात मारदा है तो क्रोध मिलता है, लोभ मिलता है, वासना मिलती है, अपनी चेतना अपनी आत्मा इस नूं थोड़ी मिलती है, यही तो इसका आपा है। ये नहीं लगता अपना आपा किसी नूं विरले नूं लगता है। तो अपना आपा खोजन विच लोकी सफल हो सकन शिवजी ने एक नगरी बनाई बनारस। कुछ सदियों तक तो वाकई उत्थे अभ्यासी लोग कट्ठे रहे, जगह चार्ज हो गई, पवित्र तीर्थ बन गया। लेकिन सहजे सहजे साधु घटते गए तो दुष्ट बढ़ते गए, सतवादी घटते गए झूठे बढ़ते गए, ईमानदार घटते गए बेईमान बढ़ते गए, संतोखी घटते गए लोभी बढ़ते गए, निर्माण मनुख घटते गए अहंकारी बढ़ते गए। और फिर ऐसे पोस्त बन गई कि 99% बेईमान अहंकारी दुष्ट किधरे 1%। तो शिवां दी नगरी साधुआं दी नगरी ना बन सकी, बनारस मशहूर हो गया ठगां लई। ए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग अद हो गई। ठगां लई ते नगरी नहीं बनाई सी, ठगां वास्ते ते शहर नहीं बनाया सी शिव जी ने, साधुआं वास्ते बनाया सी, संतां वास्ते बनाया सी। शिवजी दे समय बनारस दे साधु मशहूर सन, संत मशहूर सन। भई बनारस दा संत है, बनारस दा पढ़ा लिखा विद्वान है, ए बनारस दा ब्राह्मण है, ए बनारस दा ज्ञानी है, ए बनारस तो पढ़ लिख के आया है, ए बनारस दा संत है। अज नहीं, ए बनारस दा ठग है। संत दी गल नहीं रही, ठग दी। इंग्लैंड देश दास दे नाल एक मुसलमान चलता रहा, बड़ा अव्यासी बंदा सी, अगर रावल पिंडी दे रहिंदा है। तो मैनू कहन लगा गुरु नानक दी बाणी खास करके विचार सुनन दा मैनू शौक है, जे थानू इतराज ना होवे तो मैं थोड़े नाल चला। मैं कि कोई नहीं, 1.5 महीना दास रहा सी, 1.5 महीना नाल रहा, 2-3 दिन संकोच भी करता रहा। मैं मुसलमान हाँ, कोई इतराज तो नहीं करनगे। मैं कि मैनू तो इतराज नहीं है, जोड़ा इतराज करेगा वो मैं नजिठ लवाना, तू क्यों चिंता कर दें, मैं उन्होंने हाथ जोड़ लवाना। किसी के घर लंगर छकन गए तो बेचारा संकोच करे, उन्होंने किधरे पुरानिया गल्ला याद सन, भी भांडे में हाथ लग जाए तो हिंदू सिख धोते सन, अग दे नाल मांजते सन, भी मुसलमान के हाथ छू गए। मैं कि तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू नाल चल। और उसने वाकई कि जी छुआ छात है, करीबन करीबन हिंदुस्तान ही ज्यादा है, बाहर जरा घट है। किसी ने महसूस नहीं किया, खुश होया, बहुत प्रसन्न होया। हज करके भी 2-3 दफा आया सी, तो मैं अपना ज्ञान वधाने वास्ते, क्योंकि सऊदी अरब देच खास करके मक्के मदीने सिंघां नूं ते जान नहीं देंदे, करबला देच पहुंचने देच मैं सफल जरूर हो गया सी। वो इराक देच है, गुरु नानक देव जी का स्थान दर्शन करने तो बाद मैं करबला चला गया सी, हसन हुसैन दी दरगाह देखण। उत्थे मैं देख लिया, उत्थे मैं बहुत कुछ नोट भी किया। अगले उत्थे जिहड़े इंतजामी सन उन्होंने भी भुलेखा रहा कोई सैयद है, मेरी काली पगड़ी देख के ना, क्योंकि ईरान देश मौलवी काली पगड़ी बनते हैं, उन्होंने कहा कोई सैयद है मौलवी है। बाहर मैं आया ना तो फिर मैनू कोई पूछण लग पाया, शमा सिखास्त तुसी सिख हो? तो मैं कह दिता हाँ। बड़ा औखा कहिंदा है हुण ते आ गए हो तुसी, मुड़ के ना इत्थे काफरां लई बिल्कुल ममानियत है, कोई होर देख लेंदे ते तुहाडे लई विपता खड़ी हो सकदी सी, इत्थे नहीं आना। फिर मैनू पता चलिया करबला देश भी ममानियत है, करबला देश भी गैर मुसलिम नहीं जा सकता, जद्दा देश जो खाना काबा है मक्का है उस देश भी नहीं जा सकते, मदीने देश भी नहीं जा सकते। तो मैं अपनी जानकारी वधाण वास्ते उस तों पुछया, मैं कि कूफा नगरी बनाई सी जिवें बनारस वसाया सी शिव जी ने, तो कूफा उस नगरी की कोई गल दसो, मैं कहा बाकी गल छड़ो। मैं कहा वो तो संतां वास्ते फकीरां वास्ते बनी सी, अभ्यासियां वास्ते बनी सी। पता मैं की कहन लगा, कहिंदा 1 महीना मैं रह के आया, सब ठग ही ठग रहे, जालम लोग रहे। वो मैं कहन लगा, कहिंदा उत्थे तो मैं नहीं कह सकता सी, सऊदी अरब पर तुसी हुण पूछ लिया तो मैं थोनों कहना कुछ भी नहीं, कोई फकीर नहीं है, फकीरां लई नगरी जरूर बनाई गई सी, फकीर नहीं है। अभ्यासियां लई नाम रसक लोगां लई रब नाल जुड़न वालियां लई नगरी वसाई सी बनारस ने, जो है शिव जी ने। लेकिन बनारस देच आज संत नहीं ने, कुछ भी नहीं है। कबीर जैसे एक महान दार्शनिक ते सतवादी महापुरुष नु भी कहना पया ए हर के संत ना आखिए, हरी दे संतां वास्ते बनाई सी ने नगरी ना, ए हरी दे संत नहीं ने, ए हर के संत ना आखिए, ए बनारस के ठग। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की रसना तो भी निकल गया सी ते गुरु प्रताप सूरज दे वाक में थोड़े सामने रखते हैं ते गिला शिकवा जागे ते कवि संतोख सिंह जी दे करना ते जबद हिम्मत है ते गुरु तेग बहादुर साहब ते कर लेना। मैं ते एक पाठी दी तरह पढ़ के थानू सुना रहा। दर्शन करन आए धन गुरु तेग बहादुर साहब ते महंता ने तीर मलिया ने दरवाजे बंद कर देते, अंदर नहीं आ सकते, हद हो गई, जिसका थां है वो ही नहीं आ सकता, जिसकी जगह है वो ही नहीं आ सकता। ये लगता है अमृतसर की कोई पुरानी परंपरा ले गई जगह गुरु तेग बहादुर साहब की, गुरु तेग बहादुर साहब नहीं आ सकते, दरवाजे बंद कर देते, किसी अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, बाहर बैठे। वापस जान लगे हैं मुखार बिन तो की निकले। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने ए मसंद जो अमृत सरीए, ये जो अमृत सर दे मसंद ने, ए मसंद जो अमृत सरीए, त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। हद हो गई, ऐसे वाक गुरु तेग बहादुर साहब थे। और लिखते ने कवि संतोख सिंह गुरु प्रताप सूरज की गल, ए मसंद जो अमृत सरीए, त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। त्रिश्ना की अगन दे सड़न वाले वास्ते ते नगरी नहीं वसाई सी, ते सिफती का घर बनाया सी। पर मसंद, हे मसंद जो अमृत सरीए, त्रिशन अगन के अंतर, ये सारे अमृत सरिया ले नहीं, कि इस बुले खिचना पै जाना, मसंदा ले, सिर मसंदा ले, सारे अमृत सरिया ले नहीं है। ए मसंद जो अमृत सरिए, त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। बीबिया ने किधरे बहुत सेवा की थी, माफी मंगी, तो सतगुरों की रसना तो एक वर भी निकल आया, माइया रब रजाइया। ये गुरु तेग बहादुर साहब के वाक ने, उस दिन तो सिख जगत दे प्रचलित हो, इन बीबिया ने पर्दा ढक लिया, गल बन गई। और गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा ठीक है, थोड़ी सेवा कबूल, थोड़ा जप तप कबूल, थोड़ी मेहमा कबूल, तुसी ठीक, माइया रब रजाइया। थानू रब ने त्रिपत किया है, वह ते त्रिश्ना दे सड़े हुए ने, तुसी त्रिपत, वह भुख है। हे मसंद जो अमृत सरीए, त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। कूफा बनाई सी खुदा शनास लोगां लई, नहीं रही। बनारस बनाया सी रब नाल जुड़न वालियां लई, शिवजी नूं सफलता नहीं मिली। कोशिश करो अमृतसर दा जेड़ा भी वासी होवे, वो गुरु दी सिफ तो सलाह नाल भेजिया होवे, सबर ते संतोख दा मुजस्मा होवे, दुनिया नूं कहण दा मौका मिले कि धन गुरु रामदास जी ने जो नगरी वसाई सी, आके प्रत्यक्ष रूप देख लो, ये अमृतसर सिफती दा घर, ये सिफ तो सलाह दा केंद्र है, ये प्रभु दी महिमा दा केंद्र है। इत्थे साबर लोग रहिंदे ने, संतोखी रहिंदे ने, सतवादी रहिंदे ने, परोपकारी रहिंदे ने, सेवा स्वभाव वाले रहिंदे ने। ये छाप दुनिया नूं साथों ही मिलेगी, जिवें बनारस दे वसनीकां तों छाप मिलेगी। 84 दे च दो तीर्थां दे उत्ते सिखां ते बहुत जुलम होया, एक मथुरा एक बनारस। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिन्हां ने जनेऊ दी खातर कुर्बानी दी, उन्हां दा इतिहासक स्थान मथुरा दे जला दिता गया सी, जल गया सी। गुरुद्वारे दे ची 13 सिंह मार दिते, कतल कर दिते। हद हो गई, मथुरा कृष्ण दी नगरी, वक्त दे अवतारी पुरुष दी नगरी, कृष्ण दा उत्थे जन्म होया, बेकसूर बंदियां नूं मारो, बैठे ने विचारे गुरुद्वारे च, तुसीं उन्हां नूं मारो। और जो सरबत दा भला मंगदा है ते जनेऊ दी खातर अपनी जान देंदा है, तुसी उस दे घर नूं जलाओ। ਮਲੀਨ ਲੋਕ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਥੁਰਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਥੁਰਾ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੇ ਨਿਆਰੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੇ ਨਿਆਰੀ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਕੂਫਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਅੰਕਾਰ ਜੀ। ਤੋ ਤਮਾਮ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਜਗਤ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਧਰਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਲਈ ਬੇੜੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਬਣੇ, ਤੱਟ ਬਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਰਥ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੀਰਥ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਅਗਿਆਨ,
एको ही पुन है की ज्ञान, ज्ञान आश्रित जो भी कर्म है सब पुण्य है, अज्ञान आश्रित कुछ भी पुण्य नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पाप बंदा क्यों करता है अज्ञान करके, जे पुण्य भी अज्ञान करके किते जा रहे हैं तो इन्हों पुण आखण की की लोड़ है। पाप पुण्य दोए एक समान, गुरबाणी का फैसला एको जया ने, पाप पुण्य दोए एक समान एको जया ने। अगर अज्ञान आश्रित किते जा रहे हैं, एको ही पुण है कि ज्ञान, एको ही पाप है कि अज्ञान। अज्ञान है तो फिर सारा अनर्थ चलेगा, ज्ञान है तो सब कुछ सकारत होगा। तो शब्द भी विचार अंतरीव ज्ञान, बस यही तीर्थ है, यही सही मैंने आंदे जो है तीर्थ है। भगत कबीर जी दी गद्दी ते बैठे सन भगत धनी राम, जिन्होंने कबीर पंथ का प्रचार किया भारत विच, और जिन्होंने कई थावां ते कबीर मठ बनाए, उसने बनाए सन धनी राम ने। इसने कबीर दे नाम ते बाणी भी उचारण की है जो बीजक राम ग्रंथ दे मौजूद है। जिहड़ी सिर्फ कबीर दी बाणी है वह गुरु ग्रंथ साहब दे मिलती है, धनी राम दी नहीं है। गुरु नानक ने जो बाणी एकत्र की कबीर दी वह कबीर दी है, कबीर दी गद्दी ते जो बैठे सन धनी राम उन्होंने बोल नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय तक कबीर पंथ का भारत विच प्रचार करते रहे, खास करके मध्य भारत विच MP विच, उधर ये मठ बहुत मिलते हैं, अज भी मिलते हैं। तो कबीर पंथी है अज भी उधर कोई 1 करोड़ के करीब ने, और उन्होंने कहते हैं सतनामी, कबीर पंथियों उत्थे कहते हैं सतनामी, बहुत तादाद है। हुण तो इन्होंने रायपुर के एक गुरद्वारा भी बनाया है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी किया, इन्हां विचों कुछ सिंह भी सजे ने। इस करके सजे ने भी लोग सानू शूदर कहें, जुलाहा कहें, कपड़े बुनन का काम करते हैं, सतनामी। इन्हां दे मठ उस पासे जो है बहुत सारे ने। धनी राम ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक जो कुछ कहते रहे ने, परोपकार करते रहे ने, उस समय च इन्हां ने अपनी बाणी नू कोई लिखती रूप नहीं दिता सी, बाद दे दिता होना है, और बीजक रामक ग्रंथ दे जोड़े आना है। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी के बोल बाद दे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जोड़े ने गुरु ग्रंथ साहब दे, इस तरह बीजक ग्रंथ दे धनी राम ने अपने बोल बाद दे दर्ज किए ने। शुद्ध रूप दे कबीर की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे है, ये धनी राम के बोल नहीं ने, कबीर के बोल ने, पर बीजक दे अद्धे तो ज्यादा बोल धनी राम दे ने। बहुत सारी बाणी कबीर के नाम के उत्ते थानू जिहड़ी इधर उधर सुनन नू मिलती है, किधरे रेडियो सुनन नू मिलती है, गायकों को सुनन नू मिलती है, ये धनी राम की है, कबीर की नहीं है। ये कबीर की गद्दी ते बैठा सी और उस दे नाम ते बाणी उचारण करता सी। धनी राम का एक बोल, जट बड़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों ना तरहें जिनके लंबे लंबे पर हैं। बोड़ का दुध पा के केसा नू लमकाया जाता है, 10-10 फुट 15-15 फुट जटावां बनाया जाता है। कबीर खुद भी केसा नू लंबा करना या केसा नू मुनना दोहां दे हक विच नहीं सन। आप कहिंदे सन जिस तरह प्रकृति रखती है वैसे ही रखो, इन्हां नू छोटा करन दी लोड़ नहीं, इन्हां नू वड्डा करन दी लोड़ नहीं। कबीर प्रीत इक स्यों की है, आन दुबदा जाए भावें लांबे केस कर भावें घर मुड़ाए। भावें बोड़ का दुध पा के लंबे कर, भावें घस के तू इन्हों मुन छड़, जैनी लोग घस के मुनते हैं सारा दिन, उन्होंने सिर दे जिहड़ा साधु बनता है राख पा के सिर नू रगड़िया जाता है, जब केस हिल जाते हैं तो एक एक केस पुटिया जाता है, इन्हू कहिंदे ने घर मुड़ाए घस के मुनना। बहुत कठिन साधना है, जैन मार्ग संयम अत साधन, बहुत गहरी साधना है। तो कबीर कहने भावें लांबे केस कर भावें बोड़ का दुध पा के तू लंबे कर ले, ते भावें घस के मुन ले, रब की प्राप्ति नाल इसका कोई मतलब नहीं। सिख ना लंबा करता ना छोटा करता, प्रकृति जैसे रहन देती है ठीक। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुड़ाए काए, जो कुछ किया सो मन किया मुंडिया मूड अजा है। मैं अपना दाड़ा देखदा 20 साल का इत्थे ही रुके होया है, ना वधदा है ना घटदा है। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਰੋਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਬੜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹੈ, ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਹੈ ਜਿਨਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਰ ਹੈ। ਸੰਖ ਬਜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹੈ, ਗਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸੰਖ ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਵਹੀ ਨਰ ਤਰਹੈ ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਹਰ ਹੈ। ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ।
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਦਸ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੌਦਸਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਅਸ਼ਟਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੰਨਿਆ ਮਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਇਹ ਦਸ ਪੁਰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਾਹਰਾ, ਇਹ ਦਸ ਪੁਰਬ ਦਸ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਦੋਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਗ, ਇਹ ਜੋ ਦਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਸ ਦੋਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਦਸ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਸ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਦਸ ਪੁਰਬ? ਦੋ ਚੌਦਸ਼ਾਂ, ਦੋ ਅਸ਼ਟਮੀਆਂ, ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਤਵਾਰ ਚਾਨਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਮ, ਮਸਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ। ਇਹ ਦਸ ਪੁਰਬ ਨੇ ਦਸ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਨੋ ਦਸ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਪਾਪ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ।
ਧਰਣੀ ਧਰ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਸਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਮ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸ ਪੁਰਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮਦਾਰ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ।
ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਮਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਗੁਰ ਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਣਾ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ, ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਚ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮੈਲ, त्या मल धोई आ।
मन विच सच दा वासा नहीं होया ते की तू मैल धोती, की तू तीर्थां दा इशनान कीता, तीर्थां दा तू इशनान कीता, मन तेरा झूठा, मन विच गलत विचार पे चलदे ने, बाणी तेरी गलत बोल रही है, जबान तेरी गलत बोल रही है और शरीर तेरा सब कुछ गलत करी जा रहा है, तो फिर ये तू की इशनान कीता है, की तू तीर्थां दे तैन आया। हां जी,
गुण है हार परोए किस तारोईया।
परमात्मा दे गुणां दा हार अपने कंठ दे च पा, अपने गले दे च पा, भाव उस दे गुणां दा जो है उच्चारण कर, फिर तेनू किसे दे अगों रोना नहीं पेगा, पिटना नहीं पेगा, आनंद हर वक्त तेरी चोली च पेगा। हां जी,
विचार मारे तरा तारे उल्टे जून न आवे।
शब्द दे विचार दे नाल ही अपनी वासना नू जो है मारे, इस तरह भौजल तो तरेगा, अपने साथियों जो है तारेगा, मुड़ के फिर इसका जन्म नहीं होएगा, जन्म मरण तो जो है बच जाएगा। हाँ जी,
आप पारस परम त्यानी सच सच पाव।
जब सच दे च मनुख जुड़दा है तो सच नू पा जांदा है और परम ध्यान की अवस्था दे च ये सच नसीब आउंदा है और फिर इस तरह बन जांदा है जैसे कि पारस, फिर जेड़ा इस दे कोल बैठता है उस दे अंदर सच की लगन पैदा आती है, सच की तड़प पैदा आती है, जेड़ा भी इसकी संगत करता है वह भी सच के मार्ग से चलता है, वह पारस की तरह बन जाता है। हाँ जी,
आनंद अनदिन हरख साचा दुख किल विख पर हरे।
शब्द के विचार के नाल जब किल विख पाप मिट जाते हैं तो सारे दे सारे दुख मिट जाते हैं, दिन रात आनंदमई अवस्था बन जाती है। हाँ जी,
सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने।
गुरु जिसनों ये सच्चाई जो है दिखाई देंदा है उसके हिरदे विच फिर सच की प्राप्ति हो जाती है, नाम की जो है प्राप्ति हो जाती है, आमने जामने उसके जो है मिट जाते हैं, परम आनंद की अवस्था उसनों उपलब्ध हो जाती है। हाँ जी,
संगत मीत मिलाप पूरा नावण।
संगत विच बैठ के जो शब्द की विचार करनी है ते जो सुनना है यही पूरा इशनान है और यही पूरी पवित्रता है। हाँ जी,
गावा गावन हार शब्द सुहावना।
जब कोई गा रहा है गाण वाला गुरु का जो है शब्द इसनु सुनना ही सही मायने का इशनान है और यही पूरा प्रभु का मिलाप है। हाँ जी,
सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते।
मन नाल जब तू प्रभु की सिफत तो सलाह करेगा तो तेरे अंदर दया पैदा हो जाएगी और जैसे दया पैदा होगी तू पुनीत हो जाएगा, दानी हो जाएगा, सारे गुण तेरे अंदरों निकलेंगे। हाँ जी,
फिर संग पावा सहज नावा बेणी तो संग में सत सते।
दरअसल त्रिबेणी का जड़ा संगम है इनू तीर्थां दा राजा कहिंदे ने, सिरमौर तीर्थ, मुखी तीर्थ है जड़ा प्रयागराज है, बाकी भी तीर्थ ने पर 68 तीर्थां दे च तीर्थ राज करके आखिया जांदा है प्रयागराज। इनू कहिंदे ने त्रिवेणी, गंगा जमुना ते सुरस्ती दा मिलन है इत्थे। नानक धूर पुनीत साध लख कोट पिरागे। गुरु नानक, रब नाल जुड़े हुए पुरुष की किधरे तोड़ मिल गई है तो पातशाह कहिंदे ने तू करोड़ां प्रयागराज का इशनान कर ले। करोड़ां एक नहीं, करोड़ां। ये त्रिवेणी तीन नदियां का संगम है और 68 तीर्थां दे चौं सिरमौर तीर्थ है। भगत बैणी जी होए ने बड़े सतपुरुष ब्रह्म ज्ञानी, कहिंदे ने कुंभ लगता है प्रयागराज ते 12 साल तो बाद। वैसे 4 नगरियां ने जिथे कुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक ते उज्जैन। उज्जैन विच सिपरा नदी दे कंडे ते कुंभ लगता है, नासिक विच गोदावरी दे कंडे ते, प्रयागराज दे त्रिवेणी दे कंडे ते, हरिद्वार विच गंगा दे तट ते। कुंभ लगया प्रयागराज तो सारे बैणी नूं समझाण लग पए, चल पता नहीं फिर जिंदगी दे चे कुंभ आना है कि नहीं, 48 साल बाद किधरे चक्कर लगेगा, क्योंकि प्रयागराज तो बाद फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन, फिर नासिक, फिर किधरे प्रयाग की वारी आएगी, ये तू चल साडे नाल प्रयागराज दे इशनान कर। कुंभ का इशनान ਬੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੇ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਬੈਣੀ ਤੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਥਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸੁਰ, ਪਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਸੁਰ, ਸੁਖਮਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪਸੰਤੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਜੈਸੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਭ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਦ ਮੈਂ ਪੇਖਿਆ, ਘਟ ਹੂੰ ਘਟ ਜਾ ਗਈ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਚਰੀ ਘਟ ਮਾਏ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੇ ਇੱਕ ਠਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜਾਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਬੈਣੀ ਤੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬੈਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋੜ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਣ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਠ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਸੰਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਪ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਣ। ਵਿੱਚ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕੋਈ 25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਕੱਠ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ 25-30 ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਵੀ ਜਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੋੜੋ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ, ਦੋਨਵੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਬੈਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਘਟ ਹੂੰ ਘਟ ਜਾ ਗਈ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਚਰੀ ਘਟ ਮਾਏ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਨਣਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੇ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਬੈਣੀ ਤੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਥਾਏ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਿਰਮੌਰ ਤੀਰਥ, ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲ ਹੈ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਆਦੇ ਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜਾ ਸਵਾਇਆ,
ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਉਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ,
गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया।
जिथे सतसंग है उथे जद मनुख गतिमान हो जाता है, उथे पहुंचता है तो उसकी सुरत नू गति मिलती है। तो सत्संग की बख्शिश दे नाल, रहमत दे नाल, मेहर दे नाल परमात्मा का मिलाप नसीब हो जाता है, ईश्वर का मिलाप नसीब हो जाता है। हाँ जी,
कहन कहे सब कोए के वड़े आखिया।
कहन मात्र सारी दुनिया समाधि की गल करती है, परमात्मा की गल करते, उसके देवी गुणा की गल करते ने, उस आत्मक पहुंच की गल भी करते ने। कहण वाले तो इस तरह कहण दे बथेरी इस तरह की अवस्था का जिक्र करते हैं, परमात्मा का जिक्र करते हैं, पर साहब कहते हैं सिर्फ कहना ही आता है, बस सिर्फ कहना ही है, रसना तक ही है, और वाकई उन्हों का जोड़ा कहना है वो सीमत है। हाँ जी,
हाँ मूर्ख नीचे अजान समझा साखिया।
सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं मैं बिल्कुल अनजाण हाँ, ना समझ हाँ, तेरे प्रत्यक्ष प्रमाण करके, साखी कहते हैं साक्षात गवाही, तेरे प्रत्यक्ष प्रमाण करके ही मैं समझ सकदा, मैं जान सकदा। शब्द दी विचार जिन्ने चिर तक मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, मेरे अनुभव दे च नहीं आई, तो मैं किस तरह समझा, क्योंकि मैं अजाण हाँ, नादान हाँ, ना समझा। हाँ जी,
सच गुर की साखी अमृत भाखी इत मन मान्या मेरा।
गुरु की गवाही, गुरु का शब्द, गुरु की गवाही ये वाकई सच्ची गवाही है, गुरु का शब्द वाकई सच्ची गवाही है, इस देच मेरा मन मन गया है, ये अमृतमयी बोल ने इस देच मेरा मन जुड़ गया। हाँ जी,
कूच करहे आवह बिखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा।
शब्द दे जप नाल, शब्द की गवाही नाल, शब्द दे च मन मन गया है, बच गया। जगत है जहर लददा है, कट्ठी करदा है, रुखसत हो जाते ने फिर जमदे ने फिर मरदे ने फिर जमदे ने फिर मरदे ने, जीवन भर जहर कट्ठी करदे ने, जहर नू लद के लै जांदे ने, जहर परमात्मा नू कबूल नहीं आउंदी, फिर ये वापस आ जांदे ने, इस तरह इन्हां दा आवना जामना बनिया रहिंदा। हां जी,
आखण तोट न भगत भंडारी परे पुर रहा सोई।
परिपूर्ण परमात्मा दे बोलां दी तोट नहीं, उहदे भगती दे खजाने भरे हुए ने, भरे हुए ने, भरपूर ने, किसी चीज की उत्थे तोट नहीं, ना गुणा की, ना भगती की, ना प्रेम की, ना आत्म ज्ञान की, बहुत बड़े जो है खजाने ने उस परिपूर्ण परमात्मा दे। हां जी,
नानक साच कह बेनंती मन मांझा सच सोई।
सतगुरुदेव जी महाराज कह रहे ने कि मैं सच कह रहा और बेनती दे रूप च कह रहा, हुक्म दे रूप च नहीं, जिहड़ा अपना मन मांझ लैंदा है बस वो सच का स्वरूप हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो सच न मांझण दे लई है गुर शब्द की विचार, नाम का जो है जप, शब्द छंद सी ते बहुत विस्तार सी। आप जी का समा मैं अज फिर लै गया, ज्यादा खिमा करनी, फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा।